الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. क्या पढ़े थे आज की क्लास में? कहाँ तक पहुंचे थे? रेहानी। इतनी दूर के ये आवाज के साथ आपकी आवाज। हाँ तो उनकी क्या तो, अब वो तो ओवरऑल टॉपिक जाहिर है, खुलफाए राशिदीन में सबसे पहले वही थे, तो उनको खलीफा बनने के प्रोसेस पढ़ रहे थे और कोई ज्यादा डिटेल में। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिया था कि एक तो खुतबा सतीफा बनू साद में दिया था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के दिन ही हुआ था, और दूसरा खुतबा जो है वो अगले दिन मस्जिद नबवी में दिया, जिसमें ज़्यादा बड़ी तादाद में सहाबा किराम शामिल थे। ठीक है, इन्होंने ऑनलाइन क्या लिखा है? सतीफा बनु साद में खिलाफत का वाकया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया था, सब ने बैत की थी। ठीक है, हाँ बस ठीक है इंशाल्लाह। तो ये बस इतना सही रिकैप करके हम आगे बढ़ते हैं कि जब ये खिलाफत की जो डिस्कशन थी अंसार और मुहाजरीन के दरमियान, ये मुकम्मल हो गई उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन, ये दो मुहाजरीन खुलफा वहां पे मौजूद थे। इन्होंने जो है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन को आगे किया, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रजान जो थे उन्होंने जब खुतबा मुकम्मल किया, खुतबे में उन्होंने ये नहीं कहा मुझे खलीफा बनाओ मुझे खलीफा बनाओ, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि खिलाफत जो है वो कुरैश में रहेगी मुहाजरीन, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सबसे पहले वही ईमान लेकर के आए, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी हैं, खानदान वाले भी हैं, तो खिलाफत जो है ना वो कुरैश के पास ही रहनी चाहिए। अच्छा, एक और जगह बाकायदा हदीस मुबारक मौजूद है कि जिसके अंदर ये भी तफसील है, जो कि पिछली दफा बात नहीं हुई थी, ये भी तफसील है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंसार की जितने फजाइल नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए थे ना, वो सारे फजाइल भी इस खुतबे के अंदर बयान फरमा दिए, अंसार के सारे फजाइल, हत्ता कि वो वाली बात भी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर सारे लोग एक रास्ते पर जा रहे हों और अंसार दूसरे रास्ते पर जा रहे हों, तो मैं उस रास्ते को इख्तियार करूंगा जिस रास्ते को अंसार इख्तियार करेंगे। ठीक है, ये भी फरमाया। और फिर नबी हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि अंसारी सरदार थे, है ना, साद बिन मुआज का तो इंतकाल हो गया था और साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला जो है वो जिंदा मौजूद थे, अभी वही सरदार थे अंसार के, एक लेफ्ट सरदार लेफ्ट ओवर वही थे, तो उनको मुखातिब होकर फरमाया कि साथ तुमको याद है कि नबी रसूलुल्लाह ने एक वक्त तुम्हारे सामने फरमाया था कि जो खिलाफत होगी जो इमामत होगी वो कुरैश के अंदर होगी, तो साथ बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को वो बात याद आ गई। देखिए, अब हर चीज हर बंदे को हर वक्त याद नहीं रहती ना, याद दिलाने से फिर वो बात याद आ जाती है। ठीक है, तो उनको बात याद आ गई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने इस बात का जिक्र किया था। ठीक है, और उन्होंने फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के हाथ पे भी बैत भी कर ली, वरना तो अंसार उनको बनाने वाले थे खलीफा, अब उन्होंने भी बैत कर ली, तो ये मामला जो है वो मुकम्मल हुआ। और उसके बाद फिर सब लोग जो है ना वो हुजरे मुबारक की तरफ वापस आ गए। ठीक है, अब जब यहाँ पे वापस आए तो नबी अलैहिस्सलाम तो अपने बिस्तर मुबारक के ऊपर जो है वो आप मौजूद थे, इंतकाल हो चुका था, रूह परवास कर चुकी थी, लेकिन बॉडी जो है वो बिस्तर के ऊपर ही मौजूद थी। तो अब जो है ना लोग ये सब जो आए तो नबी अलैहिस्सलाम की तजहीज व तकफीन और गुस्ल वगैरह की बात शुरू हुई। ठीक है, डेड बॉडी को गुस्ल देना ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये मुकल्ला मुसलमान बहुत सारे मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के सामने भी तो दुनिया से रुखसत हुए ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा सबको सिखाया कि जब किसी का इंतकाल हो रहा है तो उसके साथ क्या करना है, गुस्ल देना है, कैसे देना है, उसको कफन कैसे करना है, ठीक है, और कब्र में कैसे उतारना है, एक एक चीज नबी अलैहिस्सलाम ने उनको सिखाई है। तो अब जब जो है ना गुस्ल का इरादा किया इन हजरात ने कि नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ल दिया जाए, तो गुस्ल के लिए जो है वो कपड़ों को हटाना तो पड़ता है ना, ठीक है ना, ठीक है, जो शर्मगाह होती है उसके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाया जाएगा, लेकिन बाकी कपड़ों को तो हटाया जाएगा, ठीक है, गुस्ल के लिए नहलाने के लिए। तो अब ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है, अब एक तरद्दुद हो रहा है, एक फिक्र हो रही है कि क्या हमें ये काम करना चाहिए, ये तो अदब के खिलाफ हमें लगता है। तो एकदम जो है ना वो सबके ऊपर हुनूदगी तारी हो गई, यानी एक जैसे बेहोशी सी सबके ऊपर तारी हो गई, और गैबी तौर पर सबको ये आवाज सुनाई दी कि अल्लाह के रसूल को बरहना ना करो, ठीक है, अल्लाह के रसूल के ऊपर से कपड़े जो है वो मत हटाओ, ठीक है, कपड़ों में ही गुस्ल, तो बाकायदा आवाज आई, ठीक है, जैसे कि मुख्तलिफ और मौकों पर भी आवाज आई है, तो आवाज आई कि कपड़ों में ही गुस्ल दो, चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम के कपड़ों को उस वक्त नहीं हटाया गया, और उसी हालत में बस पानी डाल डाल करके जो है वो बस गुस्ल जो है वो मुकम्मल कर दीजिए, जाहिर कपड़े फिर भीग जाते हैं, उसके अंदर जो है वो पानी सीप कर जाता है, और बॉडी जो है उसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक जो है वैसे भी पाकीज़ा ही था, नजासत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ठहरती ही नहीं थी, ठीक है, तो बस इस तरीके से गुस्ल की सुन्नत जो है वो पूरी हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला गुस्ल दे रहे थे, और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके दो बेटे फजल बिन अब्बास ही थे, और जो एक और थे सतम उनका नाम था, शतक सॉरी उस फजल और कसम जो है वो करवटें बदल रहे थे, ठीक है ना, जब मुर्दे को गुस्ल दिया जा रहा होता है तो उस वक्त बॉडी जो होती है वो खुद तो नहीं अपने आप को चेंज कर सकती, अपनी करवट बदल सकती, तो जो गुस्ल देने वाले लोग होते हैं ना तो एक जो है वो पानी डाल रहा होता है और दूसरे जो है ना वो उनको करवट दे रहे होते हैं, इस तरह पहले सीधे करवट फिर बाएं करवट, ताकि पीठ की तरफ से भी जो है वो गुस्ल दिया जा सके, ठीक है। उसामा और शकरान पानी डाल रहे थे, अली अतान पानी नहीं डाल रहे थे, अली अतान जो है वो हरबन मलने का काम कर रहे होंगे, और उसामा और शकरान और शकर जो है वो शकरान जो है वो पानी डाल रहे थे, और फजल और कसम जो है वो करवटें बदल रहे थे, गोया पांच कुल हजरात जो है ना वो मिलकर के नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ल दे रहे थे, और ये काम जो है ये पांच हजरात कौन थे, ये सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत में से, घर वालों में से थे, ठीक है, कजन कजन्स थे, और जो है वो सगे चाचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला। जब गुस्ल हो गया तो सहूल के बने हुए तीन कपड़े, जो सहूल की तफसील जो है मेरे पास नहीं है, लेकिन सहूल कोई फैब्रिक होगा, कोई कपड़े की किस्म होगी, तो इसके बने हुए तीन कपड़ों में नबी अलैहिस्सलाम को कफन दिया गया, ठीक है, तीन कपड़े से मुराद तीन पीसेस थे, ठीक? उसके अंदर आप उनको कफन दिया गया, तमीज नहीं पहनाई गई, और इमामा, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम हमेशा इमामा पहन करके रहते थे ना लोगों के सामने जब आते थे, तो इमामा जो है वो कफन के अंदर शामिल नहीं था, बगैर इमामे के कफन किया गया, और फिर जो पहले कपड़ा नबी अलैहिस्सलाम पहने हुए थे तो ऊपर से जो है वो नया कपड़ा डाल करके पुराने कपड़े को नीचे से खींच लिया गया, ताकि बॉडी बिल्कुल भी एक्सपोज ना हो किसी के सामने, ठीक है। अब जब ये नहलाना हो गया, कफनाना हो गया, तो अब ये सवाल पैदा हुआ कि दफनाया किधर जाए, ठीक है, तो जाहिर है पहली चॉइस जो है वो सबके जहन में यही थी कि जिस तरह सारे सहाबा को और जिनका पहले इंतकाल हो चुका और सबको जो है वो जन्नतुल बकी के अंदर दफनाया जाए, तो यही बात चल रही थी कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना कि नबी जहां भी फौत होते हैं उनको वहीं पे दफन कर दिया जाता है, उसी जगह एग्जैक्टली जहां पे उनका इंतकाल होता है ना वहीं पर उनकी कब्र बना दी जाती है। तो अबू बकर सिद्दीक रतान से बहुत कम हदीस से मनकूल है, अबू बकर सिद्दीक रतान जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की बातों को एहतियात की वजह से बहुत कम नकल करते थे, कहीं गलती ना हो जाए मुझसे, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा कोई मामला आता था ना जिसके अंदर सहाबा में कोई इख्तलाफ हो रहा है या सहाबा अनक्लियर है किसी मामले में, तब अबू बकर सिद्दीक रतान जो है वो बता दिया करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम से मैंने ये बात सुनी है, जैसे कुरैश के पास इमामत होगी ये एक बात थी उन्होंने बताई, और ये वाली बात कि जहां पे इंतकाल होता है वहीं पे उनको दफन किया जाता है, फिर उसके बाद ये फैसला हो गया, हाँ भी अबू बकर सिद्दीक रजा तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ सबसे ज्यादा रहते थे, तो उन्होंने डेफिनेटली आपसे सुनने बात सुनी होगी, तो यहीं पे दफन करना है। अच्छा ये तो हो गया कि हाँ दफन करना है, लेकिन अब अगला सवाल क्या होगा, दफन कौन करेगा छोटे बच्चे, अंकल ही कहते छोटे बच्चे क्या
कब्र
कबर क्या, हाँ कबर, कल भी बात हुई थी आप लोगों की क्लास के अंदर, कबर जो है वो कौन सी वाली कबर होगी, यानी दहद होगी या दूसरी को कहते हैं बगली, ठीक है। तो बगली कबर क्या होती है कि बस एक ऐसा जो है ना वो गड़ा खोद दिया जाता है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, जमीन के अंदर, और बॉडी को जो है वो उसमें लिटा दिया जाता है, ऊपर से बिल्कुल जो जो टॉप होता है ना वहां पर स्लैब्स रख दिए जाते हैं, ठीक है, और फिर उनके ऊपर जो है वो मड डाली जाती है, गीली मिट्टी डाली जाती है, जिससे कि वो जो स्लैब्स ऊपर रखे होते हैं ना तो उनके जितने होल्स वगैरह हैं, क्रैक्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे भर जाए, ठीक है, गोया के सीमेंट, हालांकि वो सीमेंट नहीं होता बस गीली मिट्टी होती है, ठीक है। तो समझ रहे हैं, ये जो होल है जमीन के अंदर ये चारों तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट वॉल्स होती है, ऊपर जो है वो स्लैब्स रख दिए और स्लैब्स के ऊपर जो है वो गीली मिट्टी का लेप कर दिया, जब गीली मिट्टी से अच्छी तरह से लेप कर दिया यानी उसके सारे होल वगैरह को बंद कर दिया, अब उसके ऊपर जो है ना फिर सूखी मिट्टी जो है वो डाल दी जाती है, ठीक है, और फिर वो सूखी मिट्टी के लिए फिर बाकी जितने लोग वहां पे मौजूद होते हैं वो सब जो है वो क्या सुन्नत है कि तीन तीन उठा करके एक बंदा फेंके, फिर तीन मुट्ठी उठा करके दूसरा बंदा फेंके, तीन मुट्ठी उठा करके तीसरा बंदा फेंके, ये सारे लोग जो है उसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये होती है बगदी कबर, और दूसरी किस्म की कबर होती है लहद। लहद की कबर की क्या शक्ल होती है कि जो स्ट्रेट वॉल्स होती है ना तो तीन तरफ की वॉल्स तो स्ट्रेट ही होती है, लेकिन एक तरफ की जो उसकी दीवार होती है वो स्ट्रेट होती है लेकिन आखिर में बिल्कुल नीचे जा करके ना वो ऐसे हो जाती है, यूं खोदी जाती है और फिर ऐसे एक और सी जगह बना दी जाती है लहद, ठीक है ना, स्ट्रेट से हट करके युल हेदून अफी फी आया दी, हमारी आयात के अंदर जो है ना वो एक खुजी निकालते हैं, अल्लाह ताला ने इल्हाद का लफ्ज जो है वो इस माने में कुरान मजीद के अंदर भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसका मतलब यह है कि कोई स्ट्रेट चीज को जो है ना वो टेढ़ा कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसी जो जगह बना देते हैं ना तो जो मियत को फिर नीचे उतारते हैं तो वो बिल्कुल सेंटर में नहीं रख देते बल्कि वो जो ऐसी जगह बनाई है ना उसके अंदर मियत को रखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर रखने के बाद क्या करते हैं कि ऊपर स्लैब्स रखने की बजाय यहाँ पे स्लैब्स लगा देते हैं, ऐसे स्लैब्स लगा देते, स्लैब्स हो ईटे हो जो भी हो इस तरह से लगा देते हैं, और वो लहद के अंदर जो है ना फिर वो सिक्योर हो जाती है मियत, ठीक है, और यहाँ पे जो स्लैब्स लगा दिए यहीं पे फिर गीली मिट्टी से उसको भर देते हैं और फिर बाकी कबर के अंदर जो है वो सूखी मिट्टी जो है वो सारी की सारी डाल दी जाती है, इस तरह से कबर बन जाती है, इसको लहद कहते हैं। जी लहद ज्यादा बेहतर है कि नहीं, तो इसका एक जवाब तो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की अब आगे हम पढ़ेंगे लहद बनी, ठीक है, तो सुन्नत एक तरह से बन गई लहद, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि इट डिपेंड्स के आप कबर जो है ना वो किस किस्म की जमीन में बना रहे, ठीक है ना, हर जमीन के अंदर लहद बन नहीं सकती, क्यों, इसलिए कि अगर कच्ची मिट्टी होगी ना, गीली मिट्टी होगी, कच्ची मिट्टी, जैसे कि जो पंजाब का इलाका है राइट, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो वेजिटेशन होती है, खेत खलियान होते हैं, तो वहां पे जमीन बड़ी नरम होती है, नरम जमीन के अंदर ही तो ज्यादा चीज होंगे ना, फसल उगेगी, दरख्त उगेंगे, तो नरम जमीन होती है ना उसके अंदर आप अगर लहद बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की मिट्टी नीचे गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, तो लहद बन ही नहीं सकती। लहद कहाँ पे बनती है, जहां पे जरा पथरीली जमीन हो, थोड़ी सी सख्त जमीन हो, वहां पे लहद बन सकती है। इसी वजह से रियाज का जो इलाका है यहाँ पर चूंकि जमीन पूरी की पूरी पथरीली है, रियाज बेसिकली एक बहुत बड़ा सा रॉक है, बड़ा सा पत्थर है ये, ठीक है, तो पत्थर के अंदर जो है वो जब कबर बनाते हैं तो वो पथरीली जमीन होती है, तो इस वजह से जब लहद बना देते हैं ना तो ऊपर का पत्थर जो है वो नीचे गिर नहीं जाता, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपने देखा होगा जो भी कब्रिस्तान जाते हैं किसी के जनाजे में शरीक होने के लिए, देखते हैं कि वो लहद बनाते हैं उसके अंदर लगाते हैं, उसके अंदर मियत को रख देते हैं। सवाल पैदा हुआ कि वहां पर जो है ना वो बगली कब्र खुदेगी के लहद वाली कब्र खुलेगी खुदेगी। तो मुहाजरीन ने कहा कि मक्का के दस्तूर के मुताबिक बगली कब्र खोदी जाए, अंसार ने कहा कि मदीना के तरीके पर लहद तैयार की जाए। अबू उबैदा बगली कब्र और अबू तलहा लहद खोदने में माहिर थे, ठीक है। तो ये दो सहाबा थे और यही जो है ना वो हमेशा लोगों की कब्रें खोदा करते थे, इनको महारत हासिल थी इसके अंदर। 6 लोग गुस्ल करवा रहे थे, अली रतन, अब्बास रतन और उनके बेटे फजल, कसम शकरान और उसामा। उसामा रज़ी, हाँ उसामा भी, जी बिल्कुल ठीक है, आपने आपने सही इस्लाह करवाई। ये 6 लोग थे, मैंने 5 कह दिया था, 5 ही थे बल्कि 6 थे। उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल थे। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल थे, सामने तो अहले बैत से तो नहीं,
सिपहसालार
सिपहे सलार होने की वजह से नहीं, वो मुंह बोले पोते थे, यानी बेटे के बेटे थे। हजरत जैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके वालिद थे ना, जिनका इंतकाल हो गया था जंगे मूता में, तो वो नबी अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे थे। अगरचे के शरी हुकुम तो खत्म हो गया था मुंह बोले बेटे का, लेकिन फिर भी बेटे वाली मोहब्बत तो थी ना, तो अब वो चले गए तो बेटे दिएगा, पोते के पास फिर वो मोहब्बत विरासत में मिल जाती है, तो उसामा रज़ी अल्लाह इस वजह से उसमें शामिल थे, ठीक है। तो अब जो है वो कौन सी वाली कब्र खोदी जाए, तो तय पाया कि भाई दोनों को बुलाने के लिए भेज देते हैं, अबू उबैदा को भी और तलहा अबू तलहा को भी, जो पहले आ गया ना वही वाली कब्र बना देगा, वही अपनी कब्र बना देगा जो उसको आती है, ठीक है। तो लोगों को भेजा गया बुलाने के लिए, तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह जो है वो पहले आ पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने लहद तैयार करनी शुरू कर दी। तो नबी अलैहिस्सलाम को फिर कब्र में उतारा गया और लहद के अंदर रख करके फिर उसके बाद मिट्टी वगैरह इसी तरीके से भर दी गई और ऊपर एक ऊंट का कोहान की तरह से ना ऐसे बना दिया गया, ठीक है। ऊंट का कोहान ऐसे होता है ना, तो ऐसे जो है वो बस ऊपर, जैसे कि हमारे अकाबरीन की जो कब्रें होती हैं वो इसी तरीके से, बस छोटा सा ऊंट का कोहान सा ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम का ये कब्र बना दी गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक और बात याद आई बिल्कुल रिसेंटली, वो भी इस क्लास के अंदर तो हम करते हैं इस तरह की बातें, तो वो क्या कि अभी रिसेंटली जो है ना वो किसी की लहद वाली कब्र वो एक्सपोज हो गई। कैसे एक्सपोज हो गई? आपने जो कुछ को तो हमने क्लास में बता ही दिया था कि चंद दिन पहले आप लोगों ने हीरोज क्लास के अंदर हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के हालात सुने थे, ठीक है। तो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह का इंतकाल तो बहुत सालों पहले हो गया था, लेकिन उनके कई बेटे भी थे, तो उनके बेटों का भी फिर जो है ना वो तकरीबन सारे बेटों का इंतकाल हो गया, जो आखिरी था उनका भी इंतकाल हो गया, फिर उनसे तो मेरी मुलाकात भी हुई थी, सबसे छोटे बेटे जो थे अताउल मोमिन गालिब उनका नाम। तो एक बेटे की जो कब्र थी ना, वो अभी जो बारिशें हुई है ना पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा इंडिया में भी हो रही है, बांग्लादेश में भी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, तो इन बारिशों में उनके एक बेटे, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, उनकी कब्र जो है ना पूरी ऊपर से टूट गई, यानी जो स्लैब्स ऊपर रखे हुए थे ना वो टूट गए और पूरा का पूरा कब्र जो है वो खुल गई, ठीक है। और जो लहद थी ना वो लहद भी खुल गई, यानी नजर आ रहे अंदर क्या नजर आ रहा है कि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो पड़ी हुई है, बॉडी नजर नहीं आ रही क्योंकि उसको तो कफन में लपेट दिया जाता है, कफन सफेद नजर आ रहा है और उसके अंदर बॉडी भी मौजूद है। क्या मतलब कि अगर बॉडी खत्म हो जाती है ना, कीड़े वगैरह खा लेते हैं, विदिन 1 साल के अंदर अंदर सारी बॉडी खत्म हो जाती है, बिल्कुल डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। कहाँ चली जाती है? इवेपोरेट नहीं हो जाती, बल्कि क्या होती है, हमारी इस प्यारी प्यारी बॉडी है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी जो स्किन है, कहाँ चली जाती है? कीड़ों के पेट में चली जाती है ना, वो कीड़े कि जिनको देख करके ही हमें डर लगता है, राइट। और खवातीन तो भागी जाती हैं जहाँ पे कीड़े आ जाए, अक्सर सारी नहीं भागती लेकिन अक्सर भाग जाती हैं, हम भी हम में से भी बहुत सारे, ठीक है। लेकिन जब कब्र में चले जाएंगे तो वहां पर कीड़े ही कीड़े, कैसे कीड़े होंगे? कीड़े जो है ना वो सारे पहले से इंतजार नहीं कर रहे होते कब्र के अंदर, ठीक है ना। आपने कब्र जब खोदा होता है तो नीचे सारे कीड़े को थोड़ी मौजूद होते हैं, इल्ला ये कि किसी को अजाब मिलना हो तो अल्लाह ताला अगर कभी दिखाना चाहे ना, तो ऐसा होता है कब्र खोद रहे हैं नीचे कीड़े ही कीड़े या सांप ही सांप, ऐसे भी हुआ है वाकया, ठीक है। लेकिन उम्मीद तौर पर ऐसा होता नहीं है, तो फिर कीड़े किधर से आते हैं? कीड़े ऐसे आते हैं कि वो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बैक्टीरिया ही जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि भूख खत्म हो गई, अब खाली जो है वो आपका मीट मौजूद है, गर्मी होती है कब्र के अंदर, राइट? तो गर्म गर्म चीज के अंदर जब आप खाने की चीज रखते हैं तो फिर वो क्या होती है उसके अंदर, यानी कुछ कह रहे हाँ, वो सांप वाले वाकयात ऐसे हैं कि जब किसी कब्र को खोदी तो खोदा, उसके अंदर सांप नजर आए तो उसको बंद कर दिया, फिर किसी दूसरी जगह पे कब्र खोदा वहां पर भी सांप नजर आते हैं, जब सांप नजर आ जाते हैं ना फिर वो छोड़ते नहीं है, फिर वो दूसरी कब्र खोदते हैं वहां पर भी सांप नजर आते हैं, फिर उसके बाद तीसरी कब्र खोदते हैं वहां पर भी सांप नजर आते हैं, हत्ता कि क्या होता है वो जो लोग होते हैं ना वो तंग आ करके उसी कब्र में फेंक करके चले जाते, क्योंकि उनको भी ये बात समझ में आ जाती है कि अब इन सांपों से बचाना हमारे बस की बात नहीं है, ये कोई दुनियावी मादी किस्म के सांप नहीं है, तो अल्लाह ताला का फैसला है कि इस बंदे को जो है ना वो सांपों के अंदर दफन करना है, सांपों के साथ ही दफन करना है, ठीक है? अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करवाए। तो हमारे अंदर जो कीड़े होते हैं ना वो गर्मी की वजह से हमारा हमारी बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है, तो कीड़े जो है वो बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं, और खाने के साथ साथ फिर वो क्या करते हैं, वो बड़े सखी किस्म के कीड़े होते हैं, ठीक है? वो अकेले नहीं खाते, डॉग होता है ना डॉग, उसको जब खाना मिले ना तो वो अकेले खाता है, किसी दूसरे को नहीं आने देता, जबकि कौवा जो होता है ना जब उसको कोई जोरदार खाने को मिले ना तो कौवा जो है वो पहले शोर मचाता है, गाय 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 आसमान सर पर उठा लेते हैं, कराची में तो हमने बड़े देखे हैं ये, ठीक है? आसमान सर पर उठा लेते हैं, सारे कौओं को जमा कर लेते हैं, फिर सारे कौवे मिल करके खाते हैं उसको, ठीक है ना? कीड़ों को भी अल्लाह ताला ने ये वाली सिफत दी है कि जब वो डेड बॉडी को खाना शुरू करते हैं तो अकेले नहीं खाते बल्कि वो सिग्नल्स भेजते हैं, सिग्नल उनका क्या होता है, स्मेल, गंदी बदबू, ठीक है ना? वो बदबू अपनी बॉडी में से रिलीज करते हैं, वो बदबू जो है ना वो पूरी की पूरी जमीन के अंदर फैल जाती है, वो इनविटेशन होती है कि आओ भाई दावत है इधर, आ गया मुर्गा आ गया, ठीक है ना? अब इसको मिल करके हमने खाना है, तब जब सारे के सारे कीड़े जमा हो जाते हैं ना, अब वो जो खाना शुरू करते हैं तो फिर थोड़े अरसे के अंदर वो चटपट हजम, ठीक है? और उसके बाद सिर्फ जो है ना वो आपका एक डीएनए बच जाता है, डीएनए किधर बचता है, टेल बोन के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस टेल बोन को जो है ना वो जमीन खत्म नहीं कर सकती, और आज साइंसदान भी तहकीक के बाद बता रहे हैं टेल बोन को जमीन नहीं खा सकती, टेल बोन बच जाती है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसी टेल बोन से जो है वो अल्लाह ताला फिर सारे इंसानों को जो है ना वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट फरमा देंगे, ठीक है? जब दूसरी सूट को की जाएगी तो बहरहाल तो बॉडी तो खत्म हो जाती है, और यही जो है वो साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन भी यही है, और यही जो है वो इंसानों की ऑब्जर्वेशन भी है, हत्ता के आपने सुना होगा हमारे हजरत के बयान के अंदर ही जी ने बताया ना कि वो वॉशिंगटन में स्मिथसोनियन म्यूजियम के अंदर गारमेंट गए, तो वहां पे उन्होंने ना डेड बॉडी को, डेड बॉडीज रखी हुई थी एक कमरे के अंदर, एक डेड बॉडी रखी हुई थी कि भाई ये इंतकाल के अगले दिन जो है ना वो एक दिन के बाद डेड बॉडी का ये अशर होता है, ठीक है? उसकी आई बॉल्स जो होती है ना वो बाहर आ जाती है, आई बॉल्स उसके यहाँ से निकल करके उसके यहाँ रुखसारों के ऊपर आके गिर जाती है, ठीक है? एक दिन के बाद ये होता है, या पता नहीं एक हफ्ते के बाद ये होता है, फिर उसके बाद जब एक महीना गुजर जाता है तो अगले कमरे के अंदर एक डेड बॉडी रखी हुई है उन्होंने, जाहिर है शीशे के अंदर कवर्ड है, और उसको उन्होंने केमिकल्स वगैरह लगा के महफूज कर दिया है, कि एक महीने के बाद इंसान की डेड बॉडी का ये हशर होता है, पेट फट जाता है, उसके अंदर से चीजें बाहर आ जाती है, ठीक है ना? फिर उसके बाद जो है वो 6 महीने के बाद डेड बॉडी का ये हशर होता है, फिर 1 साल के बाद डेड बॉडी का ये हशर होता है, हत्ता कि आखिर में जो है ना वो हड्डियां रह जाती हैं, और हड्डियां भी बिलाखिर खत्म हो जाती है सारी, ठीक है? नहीं, मुसलमानों को इजाजत नहीं है ऐसा करने की कि डेड बॉडीज को जो है डिस्प्ले के ऊपर रख दें, लेकिन वो तो मुसलमान नहीं है ना, वो तो काफिर है, वो तो किसी को नहीं मानते। तो इनका इंतकाल कितने अरसे पहले हुआ था, 25 साल पहले, 25 ईयर्स गुजर चुके हैं इनके इंतकाल, ठीक है? और बॉडी जो है वो पूरी की पूरी सलामत है, क्योंकि अगर बॉडी को कीड़े खा चुके होते तो कफन जो है वो कोलैप्स हो जाता है नीचे। अच्छा, कफन कोलैप्स तो होना दूर की बात, कफन गंदा भी नहीं हुआ, सफेद, अब सफेद कपड़ा आप जमीन के अंदर डाल दें, क्या हर साल बारिशें नहीं होती? हर महीने पे बारिश नहीं होती पंजाब के अंदर, वो तो शायद मुल्तान में गालिब कब्रिस्तान है उनका, फैमिली फैमिली कब्रिस्तान, ठीक है ना, उसी कब्रिस्तान के अंदर सबकी खबरें हैं। तो बारिशें होती हैं, ऊपर से मिट्टी गीली होती है, मिट्टी गीली जो होकर के नीचे सीप करती है, भाई कफन तो फिर काला गंदा मैला चैला हो जाना चाहिए था, बल्कि खत्म ही हो जाना चाहिए था। कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन इट। साइंस जो है ना, साइंसदान जो है, फिजिसिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, ये इसको इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकते, क्योंकि उनके सारे उसूलों के खिलाफ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए अल्लाह ताला की निशानी है, ये बुरहाने रब्बानी है, ठीक है। ये देखो अल्लाह ताला जो है ना, वो साइंस के उसूलों के मोहताज नहीं है, ये साइंस तो एक एक्सप्लेनेशन है, वो चीजों जो कि हमारे सामने हो रही होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंसदानों ने बता दिया है, लेकिन अल्लाह ताला इसके बिल्कुल खिलाफ जा करके, राइट, उसूल के बिल्कुल खिलाफ जा करके अल्लाह ताला जो चीज करना चाहते हैं वो कर देते हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट स्टोरीज जो कि हमारे बुजुर्ग और हमारे मौलवी लोग और हमारे मुशायर ने बता दिए, स्टोरीज नहीं है बल्कि ये रियलिटी है। आज तक हमने कई लोगों से किस्से तो सुने थे, अभी कराची में चंद साल पहले जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जौहर के अंदर, तो वहां का वाकया किसी ने हमें भेजा, तो हमने फरहान कमर भाई यहाँ पे रहते थे, हमने कहा आप खुद जाकर के मालूम करके आए, हम उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे इस वाकये को। फरहान कमर साहब खुद मदरसे गए, वहां पे जाके उन्होंने लोगों से कंफर्म किया कि क्या ये वाकया हुआ था, तो लोगों ने कंफर्म किया कि हाँ हमने खुद देखा है कि ऐसा हुआ था। मदरसे के एक उस्ताद साहब जो कि किताबें पढ़ाते थे, ठीक है, उनका जब इंतकाल हुआ, उनकी कब्र बना दी गई, 6 महीने के बाद कराची में बारिशें हुई, वो कब्र ऐसी टूट गई, और टूट करके लोगों ने देखा कि बिल्कुल उनकी बॉडी वैसी की वैसी सलामत अंदर में, ठीक है। तो इस तरह के वाकयात तो बड़े सुने हैं, बल्कि आप में से कुछ ने शायद खुद भी देखा भी होगा, लेकिन अब अल्लाह ताला ने इस वक्त जो है ना वो इसकी वीडियो भी वायरल करवा दी। वीडियो मैंने कभी भी नहीं देखी, वीडियो क्यों वायरल करवा दी अल्लाह ताला ने, पहले क्यों नहीं वायरल करवाई, आज क्यों वायरल करवा दी, वीडियो तो पहले की बनती थी जी, खत्म नबूवत के लिए माशाल्लाह। असल में वो जो थे ना, वो खत्म नबूवत की मेहनत में बहुत ज्यादा आगे आगे होते, ठीक है। तो आजकल खत्म नबूवत का एक मामला चल भी रहा है, तो ये भी एक रीजन है, बहुत अच्छा रीजन है बता देने का, लेकिन एक और रीजन जो कि कवर कर लेते हैं सारे रीजंस को, वो क्या है, सोशल मीडिया पे लोगों को यकीन हो जाए, ठीक है, ये सब कुछ है ऑफ कोर्स, ये सारी रीजंस हैं, लेकिन इसकी बस एक जवाब जो है ना वो सारे जवाब हम कवर कर लेते हैं, वो क्या आपके
दोबारा, ठीक
ठीक है, विजुअली दिखाने से ज्यादा यकीन आता है क्योंकि अल्लाह की मर्जी, ये बड़ा अच्छा जवाब है क्योंकि अल्लाह की मर्जी, ठीक है। देखें, फिलुल हकीमी ला यखलु अनिल हिकमत, जो हकीम होता है ना उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। हिकमत का क्या मतलब होता है, हिकमत का भी यह मतलब होता है कि जिस चीज की जिस वक्त जरूरत है वो उस वक्त काम किया जाए, इसको हिकमत कहते हैं। वरना अच्छे काम बड़े लोगों को करने आते हैं, अच्छी बातें बड़े लोगों को करने आती हैं, लेकिन जिस वक्त जिस बात को कहने की जरूरत है वो बात उस वक्त कही जाए, इसको विजडम हिकमत कहते हैं। जिस वक्त जिस काम की जरूरत है उस वक्त वो काम किया जाए, इसको हिकमत कहते हैं। ये नहीं कि आपको अच्छे काम करने आते हैं तो आप कभी जहां पे नहीं करने थे वहां पे भी अच्छे काम कर रहे हैं, जहां पे करने थे वहां पे भी अच्छे, जहां पे रहम करना था वहां पे आप जो है गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करना भी बड़ी अच्छी बात है ना, लेकिन वहां पे तो रहम करना था आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, जहां पे गुस्सा करना था वहां पे आप रहम कर रहे हैं, तो ये तो हिकमत के खिलाफ है ना, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला जो काम करते हैं वो उस वक्त करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो अल हकीम है, वो उस वक्त करते हैं जब उस काम की जरूरत होती है, ठीक है ना, जब उस काम की जरूरत होती है। अब ये बारिशें भी अल्लाह की तरफ से हुई, कब्र बहुत सारी बनी हुई थी, ये वाली कब्र टूटी, ठीक है ना, और उसके बाद फिर किसी का वहां से गुजर भी हो गया जिसके पास वीडियो कैमरा भी था, फोन भी था, और अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये भी डाल दिया भाई बना लो जल्दी से वीडियो, अगर अल्लाह ताला उसके दिल में ना डालते कि वीडियो ना बनाओ बल्कि अभी सही नहीं है वीडियो बनाना, तो वीडियो बनती फिर नहीं, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने सारा का सारा इंतजाम किया है, उसकी वजह किया है इस वक्त यकीनन इसकी जरूरत थी इसकी। ठीक है, तो अब जरूरत जो हमें समझ में आती है वो क्या है कि हमारा ईमान जो है ना वो मजबूत हो जाए। एक तो खत्म नबूवत की मेहनत के ऊपर मजबूत हो जाए कि भाई देखो अल्लाह ताला ऐसे इकराम फरमाते हैं, और दूसरी बात ये कि भाई ये जो हमारा दीन ये चीजें बताते हैं ना ये गलत बातें नहीं है, 100% दुरुस्त बातें हैं कि अल्लाह ताला यानी मरने के बाद बाकायदा एक बरजख की दुनिया है, वहां पर अल्लाह ताला नेकों का जो है वो इकराम करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, और जो बुरे होते हैं उनकी हिफाजत नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें सच है। बेशक साइंस कहे कि नहीं होगी सब, ठीक है ना, अब हम किस पे यकीन करेंगे? हम साइंस पे यकीन करेंगे या अपने बशायर की बातों पर यकीन करेंगे? अब इस वाकये को देखने के बाद भी अगर कोई कहे कि नहीं साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं, मैं तो साइंस पे यकीन करता हूँ, मैं तो कहता हूँ ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, नहीं, हम तो मशायख की बात के ऊपर यकीन करते हैं। जी
जन्नत
की खिड़की खुल जाती है वगैरह, ये सारी चीजें फिर इससे कंफर्म हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा एक एक सवाल कहे बगैर पूछे बगैर जो है ये बात आगे नहीं बढ़ा सकते कि कभी आपने सुना अपनी जिंदगी में, या कभी आपने जो है वो किताब में पढ़ा या अपने अब्बू अम्मी से सुना कि किसी नेक खातून की कब्र खुल गई बारिश, अल्लाह की वलिया थी, नेक थी, परहेजगार थी, बारिश हो गई उनकी कब्र खुल गई और लोगों ने देखा कि उनकी जो है ना वो बॉडी पड़ी हुई है, सही साले बॉडी पड़ी हुई है। कभी किसी खातून का सुन? क्यों भाई, बारिश है क्या खातून की कब्र भी नहीं होती? औरतों की कब्र बारिश नहीं होती, परहेजगार होती है जी। भाई नेक औरत कौन होती है? नेक औरत वो होती है जो के पर्दा करती है, जो के अपने जिस्म को गैरों की निगाहों से बचा करके रखती है, ठीक है ना, हत्ता के अपने बुरके के साथ भी जो जिस्म होता है ना उसको भी जो है वो बिला जरूरत बाहर नहीं लेकर के आती। आप तो बुरका पहन लिया, मैं जो वो चिल कर रही हूँ अभी जो है वो कॉफी शॉप के ऊपर बुरके के साथ है, कॉफी शॉप पे बैठी भी हूँ बुरके के साथ जो है वो तफरी कर रही हूँ, और बुरके साथ के साथ जो है वो जॉब कर रही हूँ बगैर जरूरत के बुरके के साथ में सारे काम, नहीं, वो तो बुरका पहन करके जब बाहर निकलती है ना वो भी जरूरतन निकलती है, वो तो अपने घर की चार दीवारी में रहती है, राइट, अपने घर की चार दीवारी में रहती है वो औरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो जिस औरत ने अपने जिस्म को सारी जिंदगी चार दीवारी में रखा अल्लाह की रजा की खातिर और बिला जरूरत वो बाहर नहीं आई, जरूरत के साथ आने की शरीयत में गुंजाइश है, ठीक है ना, उम्मातुल मोमिनीन भी बाहर आई, सहाबियात भी बाहर आई, और उम्मत की दूसरी औरतें भी बाहर आई, जरूरत के मुताबिक बाहर आती है वरना नहीं आती, ठीक है ना। तो जिस औरत ने सारी जिंदगी अपने आप को छुपा करके रखा अब अल्लाह ताला मरने के बाद जो है वो उसको एक्सपोज कर देंगे, अल्लाह ताला क्या कदरदान नहीं है? अल्लाह ताला क्या इज्जत नहीं करते, कदरदानी नहीं करते, ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना, तो हमने कभी सुना नहीं लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान है इस बात को कहने में कि इनशाला आप कभी सुनेंगे भी नहीं कि किसी ने एक औरत की जो है ना वो कब्र खुल गई और जो है वो कफन के साथ जो है उनकी बॉडी नीचे पड़ी हुई हुई, अब गैर मर्द आकर के देख रहे हैं ओ आंटी जो है वो अंदर पड़ी हुई है, अल्लाह की वलिया थी और क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। दैट्स व्हाई हर कब्र वुड नॉट ओपन, ना विल वांट टू सेव द पर्दा ऑफ द वुमन, एग्जैक्टली, ठीक है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो अब नबी अलैहिस्सलाम के 1400 साल गुजरने के बाद गुलामों की बॉडीज को जब अल्लाह ताला ने महफूज फरमाया हुआ है इस जमीन के अंदर, तो नबी अलैहिस्सलाम की अपनी जो नबी अलैहिस्सलाम की का जसद है वो फिर वो महफूज नहीं होगा, और नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा कराम है दीगर अंबिया कराम है क्या उनकी बॉडीज जो है वो महफूज नहीं होंगी? 100% बल्कि 1000% वो सबका सब महफूज है, ठीक है। तो हम तो इस बात पे 100% यकीन रखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अपने जिस्म मुबारक के साथ अपने कब्र के अंदर बिल्कुल एज इट इज वहां पे मौजूद है, ठीक है, अच्छा, और बाकी भी औलिया-ए-किराम जो है वो मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, अब अगला सवाल ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी, अगर पढ़ी जाएगी तो कैसे पढ़ी जाएगी और पढ़ाएगा कौन? अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा, इमामुल अंबिया, जो नबियों के इमाम बने तो उनका इमाम कौन बनेगा? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो इनकार कर दिया, लेकिन मैं आपका इमाम नहीं बन सकता, राइट? वो तो पीछे हो गए थे नबी अलैहिस्सलाम, फिर आगे बाकी नमाज नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई थी ना जिंदगी के अंदर। तो अब इनको कौन, इनकी कौन नमाज पढ़ाएगा? तो फिर वही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हाँ तुम जनाजा पढ़ो। तो लोगों ने पूछा भी किस तरह से पढ़े, तो फरमाया कि घर से बाहर तो नबी अलैहिस्सलाम को नहीं निकाला जाए, ठीक है ना, ये नहीं कि मस्जिद नबी लाया जाएगा, मस्जिद नबी के बाहर जनाजा रखा जाएगा जिस तरह से बाकी लोगों की नमाज होती है, नहीं ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, घर के अंदर ही लोग जाकर के पढ़ेंगे। अब सारे लोग एक साथ तो घर के अंदर नहीं अकोमोडेट हो सकते, तो गुरु दर गुरु जितने जा सकते हैं उतने अंदर जाए और वो नमाज पढ़ करके वापस आ जाए, फिर दूसरा गुरु जाए फिर नमाज पढ़ करके वापस आ जाए, तीसरा गुरु जाए फिर नमाज पढ़ के वापस आ जाए, ठीक है। अलबत्ता एक और भी हदीस है कि नबी अलैहि सलाम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया था, बल्कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि एक दफा अहले बैत ने नबी अलैहि सलाम से पूछा था कि आपके जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, तो आप सबने फरमाया था कि जब तुम मेरी तजहीज और तकफीन से फारिग हो जाना ना, तो तुम सब के सब बाहर चले जाना, घर के अंदर कोई भी बाकी ना रहे, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना, सबसे पहले जिब्राइल और मीकाईल, फिर इसराफील, फिर मलिकुल मौत और फिर बाकी फरिश्ते इस तरह से आकर के बारी बारी मेरे ऊपर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर तुम ग्रोह ग्रोह करके अंदर आना और मुझ पर सलातो सलाम पढ़ना, ठीक है। तो नबी रसूल एक हदीस के मुताबिक ये चीज बता करके गए थे, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना। अब फरिश्ते जो है वो यानी कितने हैं भाई, उनकी तो कोई तादाद ही हम तसव्वुर नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी देर में सारे फरिश्तों ने पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, क्योंकि फरिश्ते जो है ये रूहानी दुनिया के मखलूक है, वहां पर हमारे क्लॉक्स वगैरह काम नहीं कर रही होती, तो बहुत ज्यादा काम बहुत थोड़ी सी देर में हो जाता है, जैसे कि मेराज के अंदर कहाँ कहाँ की सैर करके आ गए और बिस्तर जो है गर्म था, ठीक है, थोड़ी देर में फरिश्तों ने नमाज पढ़ ली होगी। उसके बाद फिर ग्रोह दर ग्रोह जो है वो लोग आना शुरू हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रतान और उमर रजान भी एक ग्रोह के साथ तशरीफ लाए और उन्होंने नबी रसूल के ऊपर सलातो सलाम पढ़ा, दुआ पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, और उसके बाद फिर वापस से बाहर निकल गए, फिर उसके बाद बाकी लोग आए और फिर इस तरह से पढ़ा।
और इधर के सारा व्यास तो उसको बहुत सही कह तो एक इच्छा के इनका प्रताप ने देख रहा है में लेकिन इच्छा भी है तो आज के टाइम सरिष्ठ चली गए थे
हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु का जनाजा था, तो खैबर के बाद सॉरी खंदक के बाद इनका इंतकाल हो गया था, तो उनके जनाजे में नबी अलैहिस्सलाम जो शरीक हुए ना, तो आप टिपी टो चल रहे थे। टिपी टो का मतलब होता है कि पैर जमीन पे ऐसे रख करके नहीं, बल्कि ऐसे रख करके जमीन पे ऐसे ऐसे चल रहे थे, ठीक है। तो सहाबा ने बाद में पूछा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अजीब तरीके से चल रहे थे, हमने कभी आपको नहीं देखा इस तरह से चलते हुए, तो आप ऐसे क्यों चल रहे थे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि साथ के जनाजे में इतने फरिश्तों का इज्तिहाम था, वहां पर इतने फरिश्ते थे कि मुझे लग रहा था कि जैसे जो है ना वो मेरी जगह नहीं है, तो मैं यूं कर करके चल रहा था, अपने आप को जैसे सुकड़ करके कोई इस तरह से चलता है ना, ठीक है। तो अब इनका सवाल ये है कि जब फरिश्तों को तो स्पेस का कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो फिर वो नबी अलैहिस्सलाम इस तरीके से क्यों चल रहे थे? तो वो फरिश्तों को मसला नहीं था, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम को चूंकि फरिश्ते नजर आते थे ना, ठीक है ना, तो जब आपको नजर आ रहे हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो अपने आप को सुकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। मिसाल के तौर पर मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपको आ रही है, आप ज्यादातर यहाँ पे सारे सारे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये ना होता ना, ठीक है ना, अगर ये स्पीकर माइक ना होता तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी आवाज को मजीद बढ़ा करके बोल रहा होता, क्योंकि मेरे जहन में एक फिक्र आई हुई होती कि पता नहीं मेरी ऑडियंस को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, तो मैं अपनी आवाज को रेज कर देता, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब ये माइक और स्पीकर वगैरह नहीं होता तो बोलने वाला जो होता है ना वो ज्यादा जोर की आवाज बोल रहा होता है, हालांकि लोगों का आवाज आ रही होती है फिर भी, ठीक है। इसी वजह से हमारे हजरत जो है ना वो खास तो माइक वगैरह लगाने वाले लोग होते हैं ना स्पीकर, उनको कहते हैं कि हमेशा ऐसे किया करो कि एक स्पीकर ऐसे रखो कि उसकी आवाज जो है ना वो बयान करने वाले को आ रही हो, यानी स्पीकर बयान करने वाले की तरफ रोक करके रखो, ठीक है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इंसान जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को अपने अपनी बिहेवियर को जो है ना वो चेंज करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर को चेंज किया, इस वजह से नहीं कि फरिश्तों को कोई मसला था, फरिश्ते कह रहे थे कि जगह बनाए जगह बनाए, नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की खुद ये साइकोलॉजी थी कि मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग तो मैं टिपिट यूज करूँ, ठीक है। बहरहाल तो इस तरीके से जो है वो नमाज जनाजा पढ़ी गई। अब नमाज जनाजा का तरीका क्या होता है, इंशाल्लाह आप सबको आता ही होगा, तुमको नहीं आता एक दफा सुन लें कि उसके लिए जो है वो एक दफा तकबीर कह के हाथ बांध दिए जाते हैं और सना पढ़ी जाती है, जैसे नमाज के अंदर सना पढ़ी जाती है। पूछना है कि बताता है, पूछना है कि किसी ने भी नहीं पढ़ाई, कोई इमाम नहीं, ठीक है। सबने इंडिविजुअली बस ग्रुप की शक्ल में आके खड़े हो गए और सबने अपना अपना तकबीर, उसके बाद सुभान अल्लाह हुम्मा बिहम्दिक तबारक जल्ला सना होगा खुदा लगा के, माजो जनाजा में हमने मुफ्ती साहब से सुना था कि जल्ला सना होगा उसी ऐड करना पहले, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी तकबीर होती है, अब हम हाथ नहीं उठाते दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर, उसके बाद क्या पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी, ठीक है ना, जो लंबा वाला दुरूद होता है ना जो कि नमाज के आखिरी पादे में पढ़ा जा रहा होता है वो पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कह करके फिर उसके बाद जनाजे के लिए दुआ की जाती है, अल्लाहुम्मा ये जनाजे की दुआ है, ये तीसरे तकबीर के बाद ये पढ़ी जाती है, उसके बाद चौथी दफा तकबीर कह के अस्सलाम, ठीक है, ये नमाज जनाजा। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सना अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना, फिर उसके बाद नबी जो जो भी जनाजा है उसके लिए दुआ करना। तो यही जो है ना वो नमाज जनाजा इसी तरीके से पढ़ ली गई, फर्क सिर्फ इतना था कि इसका कोई इमाम नहीं, ठीक है ना, सबने अपनी अपनी इंफरादी तौर पर आकर के नमाज पढ़ ली। जी कोई सवाल, ठीक है। अच्छा उलमा में इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि कुछ उलमा ये कहते हैं कि नहीं नमाज जनाजा इस तरह से भी नहीं पढ़ी गई, बल्कि बस लोग अंदर आए आकर के जो है ना वो दुरूद शरीफ सलातो सलाम पढ़ा और बस जो है उसके बाद वापस चले, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इख्तिलाफ है बस, अलबत्ता सबने आकर के नमाज जनाजा पढ़ी। 30,000 लोग, 30,000 अफराद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस तरीके से आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी। एक वक्त में हुजरे में छोटा सा ही तो हुजरा होता था, तो शायद 10-15 लोग एक टाइम में अंदर फिट हो सकते होंगे, 15-15 लोगों की तादाद इस तरह से तकरीबन, ठीक है। टाइम कितना लगा, टाइम वैसे लिखा हुआ नहीं है लेकिन डेफिनेटली घंटे तो लगे होंगे कहीं, ठीक है। अच्छा मर्दों ने सबसे पहले इस तरीके से नमाज पढ़ ली, उसके बाद औरतों के ग्रोह आने शुरू हुए, औरतों ने भी आकर के ग्रोह दर ग्रोह जो है नबी अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ी। अच्छा औरतें जब खत्म हो गई, बच्चों ने आकर के नबी अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा, ठीक है ना, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, सब बच्चे बच्चे सहाबा है ना, इन लोगों ने आकर के नमाज जनाजा पढ़ी, ठीक है, इनका भी कोई इमाम नहीं था। अच्छा फिर नबी अलैहिस्सलाम को कब्र में उतार दिया गया, यानी ये जो तजहीज हो गई तकफीन हो गई, तो जो कब्र का गढ़ा जो है वो खुदा हुआ था ना उसके बराबर में ही आपसे उसने की बॉडी रखी हुई थी, जब नमाज जनाजा सब फारिग हो गए तो फिर उनको आपसे उनको कब्र के अंदर उतार दिया गया, फिल कर दिया गया, कोहान की शक्ल में उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, और फिर उसके बाद इसी तरीके से जो है ना वो घर वैसे ही रहा, सहन के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, और सहन के बाद जो है वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा रहती थी, सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, इधर आयशा सिद्दीका होता है अपने कमरे के अंदर, ठीक। हसन हुसैन रजा वो तो बहुत ही छोटे होंगे ना, तो 10 साल से भी कम उनकी उम्र थी।
बच्चों
बच्चों को कंसिडर जो है ना वो जैसे हमने जो गजबात में पढ़ा था कि जिनकी उम्र 15 साल से कम थी उनको बच्चा कहा जाता था, और जिनकी उम्र 15 साल हो गई तो फिर उनको गजबे में शामिल कर लिया जाता था, तो फिर वो बड़ों में शुमार हो जाते थे। तो 15 की उम्र से कम वाले जो थे लोग जितने भी हों, जो जो खड़े होकर के वहां पे जा सकते हो सारे। आयशा सिद्दीक रज़ा जो है वहीं पे रहती रही। फिर उसके बाद अगरचे के आगे की बात है, लेकिन अभी चूंकि मौजूद चल रहा है, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु का इंतकाल हुआ तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, आपको पता है कि नबी अलैहिस्सलाम के बराबर में उनको दफन किया गया। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम का यानी का चेहरा मुबारक ऐसे रखा गया कि जैसे ये अच्छा लेट करवट लेटाते हैं ना कबर के अंदर, कबर में ऐसे नहीं लेटाते कि चेहरा ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ऐसे करवट लेटाते हैं। अब वो करवट जो है वो किस डायरेक्शन में होती है, किबला, इस तरफ किबला है काबतुल्ला, तो ऐसे लेटाते हैं कि चेहरा वो जो है ना वो किबले के डायरेक्शन में हो। तो ऐसे नबी अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को जब बराबर वाली जगह पे कबर बना करके एक और गढ़ा खोदा गया, ठीक है ना, अब ये दो घड़े हो गए, यानी गढ़ा जो है वो एक्सपैंड हो गया बेसिकली। ठीक है, तो दूसरे में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को भी ऐसे रिटायर किया कि उनका भी चेहरा किबले की तरफ, लेकिन उनका चेहरा जो है वो पीठ पीठ के लेवल पर है, कंधे के लेवल पर है, नहीं कदम को की तरफ नहीं। आप रजी अल्लाह तआला का चेहरा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ, जहाँ पे पीठ है ना वहां पे अबू बकर सिद्दीक सल्तान का चेहरा है। ठीक है, यानी ऐसे नहीं है, बिल्कुल बराबर में नहीं है, ऐसे है। ठीक है, अच्छा, आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा कंटिन्यू टू लिव इन द सेम प्लेस, है ना, सहन में दोनों कमरे हो गई। आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का जो कमरा था उसके अंदर वो रह रही अपना, इस तरह दो दो शब उनके गुजर रहे। अब उनके बाद फिर किन का इंतकाल होता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का इंतकाल होता है। ठीक है ना, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल होता है, तो वो उनसे पहले अपने इंतकाल उनको, क्योंकि उनको जख्म लगा था तो वो काफी दिन इसमें तकलीफ में रहे थे, उन्होंने बाकायदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाजत मांगी कि क्या मेरी भी कब्र मेरे दोनों दोस्तों के साथ बन सकती है, आपका उजरा है, आपकी उजरे में आपकी जमीन है, आपकी इजाजत के बगैर तो मैं अमीरुल मुमलिकत हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, है ना, मेरे मुमलिकत में यहाँ से लेकर के यहाँ तक दुनिया है, लेकिन मैं अपनी कब्र की जगह के लिए आपकी इजाजत के बगैर कब्र नहीं बना सकता। ठीक है ना, तो आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने इजाजत दे दी। आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरे दिल में था कि शौहर भी है, अब्बू भी है, तीसरी मेरी बन जाए तो मैं भी इनके साथ ही हो जाऊँ, दोनों मेरे महरम है। ठीक है, एक तो शौहर है दूसरे मेरे महरम है, लेकिन जब उमर ने मुझसे पूछवाया ना तो मैंने अपने हक को उनके ऊपर कुर्बान कर दिया, हालांकि वो चाहती कोई उनका अपना घर था, खलीफा भी जो है उनके घर के अंदर उनकी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता था। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कितनी बड़े इशार का सबूत दिया, उमर अजान के लिए इजाजत दे दी। तो जब उमर रजाना अन की कब्र बन गई ना वहां पर, अब आयशा सिद्दीक रजाना जो है रही तो फिर भी वो अपने कमरे के अंदर ही, लेकिन एक दीवार या एक पर्दा जो है ना वो कब्रों की जगह और अपने कमरे की जगह के दरमियान पार्टीशन, पार्टीशन इसको कहते हैं हिजाब, ये होता है, ये जो सर के ऊपर बांधते हैं ना, ये हिजाब नहीं होता, ये अमेरिका में होता होगा हिजाब, ये हिजाब नहीं होता, हिजाब तो पार्टीशन को कहते हैं मर्दों और औरतों के दरमियान, क्योंकि अब एक गैर महरम आ गए वहां पर, अगरचे कि वो जमीन के नीचे है, लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसको भी गवारा नहीं किया। इसको फितरत कहते हैं, जिसकी हया और पाकदामनी जिसकी फितरत में हो जाए ना, तो फिर वो मुर्दों से भी पर्दा करता है जमीन में जो गड़े हैं उनसे भी पर्दा करता है, और जिसकी फितरत में ना आए तो फिर वो कोई ना कोई बहाना बहाना करके जाए ना वो। तो इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम की यानी तदफीन भी हो गई, तजहीज भी हो गई, तकफीन भी हो गई और तदफीन भी हो गई। अब इसके बाद जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह मुसलमानों के खलीफा बन गए, उन्होंने जो एक खुतबा दिया था ना उसमें मुसलमानों को कहा था कि भाई मैं तुम्हारा अमीर बनाया गया हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो, अगर मैं कोई सही काम कर रहा हूं तो तुम मुझे सपोर्ट करो, लेकिन अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं ना तो तुम मेरी इसलाह करो, तुम छोड़ना नहीं मुझे। ठीक है, ये तमाम मामला जब मुकम्मल हो गए तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक जो है वो उमूर सल्तनत की तरफ मुतवज्जे हुए, यानी अब क्या करना है, मुल्क को कैसे चलाना है, सल्तनत को कैसे चलाना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले जो पेंडिंग में काम बचा हुआ, एक पेंडिंग काम जो नबी अलैहि सलाम का हुक्म दिया हुआ काम था वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, वो हजरत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो लश्कर भेजना था तो उस लश्कर को रवाना किया, ठीक है ना। उस वक्त जो है वो सहाबा कराम नबी हजरत उबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा कि आपको मालूम है कि बगावत हो रही है, यानी सरजमीन अरब में जो लोग या तो मुसलमान वो भी गए थे उनमें से भी बहुत सारे बागी हो गए थे, मुर्तद हो गए थे नबी अलैहिस्सलाम की वफात का सुनकर के। अब नए नए लोग थे ना, तो उनको इतना ना तो ईमान रासिख हुआ था उनके अंदर, ना उनको इतना इल्म हासिल हुआ था कि भाई अल्लाह के नबी भी दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है ना। वो शायद इस गलत फहमी में मुब्तला होंगे कि भाई अल्लाह के नबी पर तो मौत आ ही नहीं सकती, तो ये कैसे मौत आ गई। तो अब मौत आ गई इसका मतलब ये नाउज बिल्ला अल्लाह के नबी थे ही नहीं, तो इसका मतलब ये कि हम इस्लाम से बाहर निकल जाते। तो मुर्तद भी बहुत सारे लोग हो गए और बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो इसको मौका देख करके कि चलो भाई हम मदीना मुनव्वरा पे चढ़ाई कर देते हैं, तो काफी मुश्किल हालात हो गए थे। सहाबा ने से कहा कि आप देख ही रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात हैं, तो ऐसा करें कि इसको मुलतवी कर दें, अभी मत भेजें इस लश्कर को, इतनी बड़ी आर्मी है हमारी, 30,000 लोगों का वो लश्कर था, ठीक है, इतने सारे लोग मदीना मुनव्वरा छोड़ करके इतना दूर चले जाएंगे, पता नहीं कब वापस आएंगे, इतने अरसे में पता नहीं क्या हो दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर दे। तो अबू बकर सिद्दीक ने बिल्कुल इससे एग्री नहीं किया, फरमाया कि नहीं, जिस लश्कर का हुक्म नबी अलैहिस्सलाम दे चुके हैं ये हो ही नहीं सकता कि मैं उसको रोक दूं, ठीक है। फिर जो है ना वो कुछ दूसरे साहबा थे उन्होंने एक और मशवरा हजरत अबू बकर सिद्दीक को भिजवाया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जुबानी, ठीक है। वो ये मशवरा था कि चले भेज तो रहे हैं आप, भेज दें, लेकिन जो उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है ना ये उम्र में बहुत छोटे हैं, और जो दूसरे सहाबा हैं बड़े बड़े सीनियर सहाबा जो है वो इस लश्कर के अंदर मौजूद हैं, तो ऐसा करें कि आप उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हटा करके ना किसी और को अमीर लश्कर बनाए, ठीक है ना। अब ये जो मशवरा था ना इस सहाबा की तरफ से था, इसमें कोई बदनीयत ही नहीं थी, ठीक है ना, बल्कि उनकी सोच ये थी कि भाई नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो नबी अलैहिस्सलाम तो हमारे महबूब थे, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के मोहब्बत करते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम की बात के खिलाफ जाने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। तो आप नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर बनाए या किसी को भी अमीर बनाए, किसी को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब नबी अलैहिस्सलाम जो है वो चले गए हैं, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि शैतान जो है ना वो किसी के दिल में ये डाल दे कि भाई मैं तो उम्र में ज्यादा हूँ, मैं तो इल्म में भी ज्यादा हूँ, मैं तो मर्तबे में भी ज्यादा हूँ, और ये जो है ना वो बच्चा फिर मेरा अमीर जो है ये सही नहीं है, तो कहीं किसी के दिल में कोई बुरी बात ना आ जाए। तो मशवरा था कि इनको हटा करके आप किसी बड़े को, क्योंकि अब नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है ना, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने इसको भी कबूल नहीं किया और वही फरमाया कि जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने बना दिया है अमीर, मैं उसकी जगह किसी दूसरे को अमीर हरगिज मुकर्रर नहीं करूं। जब लोगों ने कहा था ना कि इस लश्कर को ना भेजें, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब बड़ा मशहूर और बड़ा जबरदस्त जवाब था कि अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान, इस लश्कर को भेजने के सिलसिले में अगर मदीना इस तरह खाली हो जाए कि मैं अकेला रह जाऊं मदीना मुनव्वरा, हत्ता के दरिंदे और कुत्ते आ जाएं और वो मुझे फाड़ करके खा जाएं, फिर भी मैं इस लश्कर को भेज के रहूंगा, ठीक है। कितना जबरदस्त जवाब उन्होंने दिया था, नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया है तो मैंने तो फिर उस फैसले को बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है। अब एक सवाल करके हम क्लास को आज रोकते हैं, जो ये है कि नबी ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इस तरीके से जो मशवरे आ रहे थे इन मशवरों को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, आना के बड़ी अकलमंदी के मशवरे आ रहे थे कि भाई हिकमत होती है, मसलहत होती है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो मशवरा मान लेना चाहिए था। तो अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो ये दोनों मशवरे नहीं माने, हालांकि बड़े सेंसिबल किस्म के मशवरे लगते हैं ना, कि भाई इतना मुश्किल वक्त आ गया है, अब हमें जो है वो थोड़ा देर के बाद जो है वो भेज देंगे। तो क्या ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, ठीक है ना, ये इल्म की क्लास है ना, तो इल्म बताने के लिए कभी इस किस्म की बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन साथ साथ नाउज बिल्ला अल्लाह कि नाउज बिल्ला क्या ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिद थी, क्या ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिद थी या ये जिद नहीं थी। हाउ डू यू टेल द डिफरेंस कि जिद थी कि जिद नहीं थी। एक मिनट, जब तक इन्होंने जो लिखा है, खवातीन बाहर निकल कर काम करने और बिजनेस करने के लिए तो सहाबियात का जिक्र करती हैं कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बिजनेस खातून खातून थी और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सहाबा इल्म हासिल करते थे और जंगों में शामिल हुई थी, लेकिन ये औरतें उसका जिक्र क्यों नहीं करती कि ये बातें बोल कर जाती हैं कि सहाबियात ने किस कदर पर्दे का एहतमाम किया और कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, क्यों नहीं करती। तो वो आप उन्हीं से पूछेंगे वो क्यों नहीं करती, क्या जवाब है, बाकी आपको पता ही है क्यों नहीं करती, खुद करना होता है तो इस वजह से नहीं कर सकते। एनीवे, तो क्या ये जिद थी क्या ये जिद नहीं थी, तो डिफरेंस क्या होता है जिद में और जिद ना होने में। ठीक, जिद ना होना जो है वो किसी सही बात को न मानना। अच्छा, अच्छा जवाब है वैसे, लेकिन उसके ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन भी हो सकता
है बात
नबी रसूल। अच्छा, कुछ अरसे के बाद एक और मौका इसी तरीके का पेश आया, ठीक है, कि जो आखिरी जिहाद हुआ था बड़ा वो था मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ, ठीक है, तो मुसैलमा कज़ाब के साथ जो जिहाद हुआ आपको पता है कि उसके अंदर 1500 सहाबा शहीद हुए और 500 उनमें से हुफाज़े कराम, ठीक है ना, तो जब 500 कुरान मजीद के हुफाज शहीद हो गए तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि हमें जो है ना वो कुरान को अब मुदव्वन कर देना चाहिए, कंपाइल कर देना चाहिए एक जगह के ऊपर, क्योंकि जो हुफाज हैं वो तो जिहाद में शरीक होने को अपनी शहादत समझते हैं, शहीद होने को अपनी शहादत समझते हैं, 500 अभी शहीद हो गए, कल को किसी और जिहाद में जाएंगे वहां पे 500 हजार और शहीद हो गए, तो इस तरीके से तो कुरान तो उनकी सीनों में महफूज है खाली, तो कुरान जो है ना फिर खत्म हो जाएगा उनकी मौत के साथ, तो हम कुरान से महरूम हो जाएंगे, तो कुरान को कंपाइल कर दें। आपको पता है ना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया, उन्होंने फरमाया कि नहीं, जो काम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नहीं किया वो काम मैं कैसे करूँ, ये कंपाइलेशन का काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर सकते थे, आप ने नहीं किया तो मैं वो काम कैसे करूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना वो इस मशवरे को मान गए, ठीक है ना, इस मशवरे को मान गए और उन्होंने फिर जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर बना करके बाकायदा कमेटी बना दी कि हाँ हम कुरान मजीद को कंपाइल करेंगे, ठीक है, पहले बात नहीं मानी, अब क्यों बात, अच्छा बात भी रीजन भी सेम ही था, नबी अलैहिस्सलाम ने फलाना काम किया तो मैं उसको कैसे रोक दूं, नबी अलैहिस्सलाम ने फलाना काम नहीं किया तो मैं वो कैसे कर दूं, रीजन दोनों वक्त नबी अलैहिस्सलाम ही थे ना, यहाँ पे बात मान गए वहां पे बात नहीं माने, ये
नुकसान
फर्क होता है जिद में और हिकमत में, ठीक है ना, जो जिद्दी आदमी होता है ना वो किसी की नहीं मानता और कभी भी नहीं मानता, जिद्दी आदमी किसी की नहीं मानता कभी भी नहीं मानता, और जो शख्स किसी हिकमत की वजह से किसी मसलहत की वजह से किसी जेन्युइन रीजन की वजह से बात कर रहा होता है वो किसी की बात ना माने तो वो भी उसके अंदर भी उसकी जजमेंट होती है जिसको कि इज्तिहाद कहते हैं, अमीर का इज्तिहाद होता है ये कि वो किस चीज के ऊपर फैसला करे कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, इसको इज्तिहाद कहते हैं, ठीक है ना, वो कभी अपने इज्तिहाद में दूसरों की बात नहीं मानता कभी अपने इज्तिहाद में दूसरों की बात मान भी लेता है, ठीक है ना, जिद्दी आदमी कभी भी दूसरों की बात नहीं, ठीक है ना, और उसके पास कोई रीजन वीजन होने की जरूरत नहीं होती, बस वो मैं बड़ा हूं मैं क्यों मानू तुम्हारी मैं ना मानू, ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हरगिज़ हरगिज़ जो है वो ऐसे नहीं थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो उस वक्त भी एक जेन्युइन रीजन था और फिर वक्त ने बताया, अल्लाह ताला ने फिर बाद में फ्यूचर के अंदर ये बात साबित कर दी कि वाकई उनका फैसला सही भी था, इस लश्कर को भेजने की जरूरत थी, अगर ना भेजते तो बहुत बड़ा नुकसान। ठीक है ना, तो वो तफसील इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जहाँ पे आज क्लास खत्म करते हैं। कुछ मैसेजेस आए हैं, सॉरी इसको बस पढ़ लेता हूँ। ऑफ कोर्स अबू बकर सिद्दीक वाज नॉट डूइंग इट बिकॉज़ ऑफ हिज विल, ही वाज डूइंग इट बिकॉज़ इट वाज द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर, एंड ही वाज ट्राइंग टू टेल पीपल दैट हुम एम आई टू चेंज द डिसीजन ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ राइटिंग एंड सेविंग द कुरान इन द बुक्स, दिस ऑप्शन वाज टू बी कंसीडर्ड एज मेनी हाफिज वर मार्टायर्ड। ठीक है, वो तो हम आपको बता दिया ना कि दोनों ही जो रीजंस थी उनकी, नबी अलैहि सलाम ही दोनों रीजंस की वजह थे। बहरहाल ये असल जो बात होती है ना, वो इज्तिहाद की बात होती है, तो इज्तिहाद के ऊपर ही हम बात समझ सकते हैं कि भाई जब अमीर समझता है कि काम होना चाहिए तो वो करता है, और बाकियों की जिम्मेदारी होती है कि उसको सपोर्ट करें उसके अंदर, अगर वो समझता है कि नहीं होना चाहिए तो अब रियाया की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पर भी उसको सपोर्ट करें, बेशक उनके बात समझ में ना आए।
Important stuff.